તારીખ 1/1/1997 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક 9 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 26
સમયસર કલષ્ટિકા
જી
સ્વાનુભવનું વર્ણન કર્યું છે ઇસ કલશને આચાર્યશ્રીને अनुभव होता है तो अनुभव में क्या होता है इसका वर्णन किया है। नास्ति से वर्णन करना पड़ता है इसलिए कि अस्ति में जो आनंद आदि परिणाम आते हैं वो सब वचन अगोचर है, उसको वचन से बता सकते हैं नहीं है, परंतु अनुभव के पहले जिस प्रकार के विकल्प चलते थे वो विकल्प का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ स्वानुभव का विषय चला है। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाण क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम किमपरविदग्भो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेव। यह स्वयं सिद्ध चेतनात्मक जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आने पर सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप सभी विकल्प नहीं शोभते और उत्पन्न भी नहीं होते। अस्मिन् धाम्नि अनुभवम् उपयाते द्वैतम् एव न भाति, इतना वचन का ये शब्दार्थ है कि यह स्वयं सिद्ध चैतन्यात्मक जो जीव वस्तु अपना स्वरूप अपना आत्मा है उसका प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, वेदन आता है, प्रत्यक्ष वेदन आता है। प्रत्यक्ष मैंने कोई मन से विचार करे उस प्रकार से नहीं, वो परोक्षता में जाता है और स्वयं स्वयं का वेदन करे, बीच में कोई इंद्रिय आदि का निमित्त नहीं हो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जब ऐसा आस्वाद आता है, अनुभव होता है, वेदन होता है, तब सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप सभी विकल्प उत्पन्न नहीं होते। स्थूल विकल्प तो नहीं होते, सूक्ष्म विकल्प भी नहीं रहते हैं, विकल्प मात्र नहीं आता। भावार्थ ऐसा है कि अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो अनुभव के विषय में स्पष्टीकरण राजमल जी खुद दे रहे हैं कि अनुभव है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, विचार है वो परोक्ष ज्ञान है, अनुभव है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वानुभव की बात चलती है। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान इतले शुं
जी
कि वेद्य वेदक भाव पने से आस्वाद रूप है, एक ही पर्याय वेदन करती है किसको। आपको एक ही पर्याय वेदन करने वाली है, और जो पर्याय वेदन करने वाली है वही पर्याय वेदन में आने वाली है, दो पर्याय नहीं है। उसको कहते हैं वेद्य वेदक भाव। तो प्रत्यक्ष ज्ञान माने क्या कि वेद्य वेदक भाव पने आस्वाद रूप है, अनुभव रूप है, उस प्रकार का अनुभव है। वेद्य और वेदक दोनों भाव एक ही अवस्था में एक ही पर्याय में है और उस प्रकार से अनुभव होता है, आस्वाद होता है माने अनुभव होता है। यह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष पने हैं, ऐसे अनुभव में कोई परद्रव्य की सहाय नहीं होती। अगर कोई परद्रव्य की सहाय होती तो वो सहाय नहीं मिलने पर अनुभव नहीं होता, यानी अनुभव छूट जाता। इसलिए किसी की सहाय नहीं है, उसका निरपेक्ष है। और अपनी ताकत से अनुभव होता है, किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं होती। इसका कारण यह है कि अपनी ताकत से काम होता है तो दूसरों के मदद की कौन सी अपेक्षा रही। स्वयं की भीतर की ताकत से ये स्वानुभव होता है। ऐसा अनुभव, यह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष पने हैं। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, ज्ञान की एक विशिष्ट पर्याय है, अनुभव है वो ज्ञान की पर्याय है। कोई श्रद्धान के लेते हैं, कोई चारित्र के लेते हैं, ऐसे होते हैं, वास्तव में वो ज्ञान की पर्याय है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है तो भी सम्यक्त्व के साथ अविनाभूत है। सम्यक्त्व होता ही है, वहां जहां स्वानुभव होता है वहां सम्यक्त्व तो हो ही जाता है। इसलिए दोनों का एक काल है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का और स्वानुभव उत्पन्न होने का एक काल है, आगे पीछे नहीं होता, एक ही समय में दोनों उत्पन्न होते हैं। इसलिए अविनाभूत बोलते हैं। अविनाभावी, अविनाभूत मतलब क्या कि एक होवे तो दूसरा होवे ही। जैसे धुआं के साथ अग्नि अविनाभावी है, अविनाभूत है, तो जहां धुआं होता है वहां अग्नि होता ही है। अग्नि नहीं होवे और धुआं होवे ऐसा कभी बनता नहीं। इस तरह से दृष्टांत है। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि को ही होता है। ऐसा अनुभव मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं होता है। जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर है उसे कोई स्वानुभव होता है। स्वानुभव होता है तो दृष्टि स्वरूप पर ही जाती है और जगह रह सकती नहीं है। तादात्म्य नहीं है। क्यों? कि सम्यक दर्शन श्रद्धान है और स्वानुभव ज्ञान है, दोनों भिन्न भिन्न गुण की स्वतंत्र पर्याय हैं। क्यों? ज्ञान शक्ति अपनी शक्ति से कार्य कर रही है अनुभव का, श्रद्धा भी शक्ति है वो अपनी शक्ति से अपना कार्य कर रही है। किसी की मदद से किसी का काम होता है ऐसी बात आपस में भी नहीं है। भले ही समय एक है लेकिन एक दूसरे की परस्पर मदद भी उसमें नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि यह अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता ऐसा निश्चय है, ऐसा निश्चय है। इस पर से जिसको अनुभव हुआ उनको सम्यक दर्शन हो गया ऐसा लेने में आता है, क्योंकि सम्यक तो बहुत सूक्ष्म है, कैसे बताया जाए, बता तो नहीं सकते, सम्यक दर्शन को ऐसे बता सकते नहीं है। लेकिन स्वानुभव का अविनाभावी होने से जिसको अनुभव हुआ उसको सम्यक दर्शन हो गया, फिर शुद्धोपयोग छूट गया लेकिन सम्यक तो चालू रहता है। शुद्धोपयोग से समव्याप्ति भी इसकी है और विषम व्याप्ति भी है, नहीं हो गए तो भी सम्यक तो चालू रहता है, शुद्धोपयोग चालू नहीं रहता सम्यक तो चालू रह जाता है। तो लब्ध को उपयोग नहीं बोलते ना, लब्ध लब्ध है, उपयोग उपयोग नहीं, उपयोग चालू नहीं रहता है, उपयोग बदल जाता है। ज्ञान के लब्ध में सम्यक ज्ञान है तो उपयोग को भी मिथ्या ज्ञान तो नहीं बोल सकते, लेकिन लब्ध है वो आत्मा के साथ अवलंबन लेकर के परिणमन करता है, जबकि उपयोग दूसरा का अवलंबन लेकर के परिणमन करता है, इतना फर्क पड़ता है, अवलंबन का फर्क पड़ता है। मिथ्या दृष्टि को नहीं होता ऐसा निश्चय है, ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने को यानी अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करती है। ऐसा अनुभव होने पर आत्मा स्वयं अपने मूल स्वरूप को परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करता है। हर एक के भीतर में जो परमात्म स्वरूप है, आत्मा परम स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, उसका अनुभव ये शुद्धोपयोग होने पर होता है, अनुभव होने पर होता है। और वो अनुभव निर्विकल्प है, फिर भी इसका निर्विकल्प जो वाच्य है उसका वाचक शब्द उस तरह है कि मैं खुद परमात्मा हूँ ऐसा मुझे अनुभव में आ रहा है, क्योंकि अपना ही परमात्मा स्वरूप अपने रूप में अनुभव में प्रत्यक्ष तौर से अनुभव में आता है। अब परमात्मा स्वरूप जो आत्मा का है, परम स्वरूप है, उसमें भाव नहीं है, न उसमें भाव है न भाव का कोई कारण भी है, इसलिए इसका अनुप्रत्यक्ष अनुभव होने पर अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को भाव का अभाव हो जाता है अवस्था में भी, यानी इसका मोक्ष हो जाता है, उसका निर्वाण हो जाता है, फिर उसको भाव किसी को एक दो चार आठ रहे तो रहे, बाकी उसका भाव का नाश हो जाएगा और वो सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा, यही कारण है इसके पीछे। अनुभव में ऐसी ताकत है, स्वानुभव में ऐसी ताकत है। और ये चतुर्थ गुण स्थान में चारों गति के जीव को होता है, मनुष्य चाहे गृहस्थी हो चाहे तमंगर हो चाहे गरीब हो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे स्वरूप हो चाहे कुरूप हो, चाहे अधिक बुद्धिमान हो चाहे साधारण बुद्धिमान हो, चाहे ब्राह्मीण वैश्य हो चाहे चांडाल हो, डेढ़ भंगी चांडाल हो, और त्रिंच जो संगनी पंचेंद्रिय है उनको भी सानुभव होता है। वो गाय भैंस बकरे मेंढक सर्प हाथी कुत्ता और ये सिंह बाघ कुत्ता अजगर जो भी मन वाले प्राणी हैं उन सबको होते हैं। बंदर हो सकता है, होता है मतलब हो सकता है मन वाले को, और नारकियों को सभी नारकियों किसी भी नारकी को होते हैं, पहली नारकी से लेकर सातवीं नारकी तक किसी को भी हो सकता है, और देवलोक में किसी भी देव को हो सकता है। चारों गति में ऐसा स्वानुभव होने का दरवाजा खुला है। इसका मतलब कि हमारे लिए भी ये दरवाजा खुला है, तात्पर्य तो वो है।
नारकी ना के बदाने पण सम्यक दर्शन
थई शके छे, सातमी नारकी में थाय छे,
राजमार्ग नहीं
को किसी को होता है, लेकिन होता है तो नहीं होने का सिद्धांत तो नहीं रहा।
हाँ नहीं, हाँ सिद्धांत एक पण दाखलो थयो,
हाँ
अश्वावध
एक होता है, एक होता है तो अनेक भी हो सकता है, जब एक को होता है तो उसी पद्धति से अनेक को भी हो सकता है। भले ही मोक्ष मार्ग की वो पहली सीढ़ी है, फिर भी भवनाशक है, स्वानुभव है वो भवनाशक है। भव रूपी अटवी है, अटवी माने जंगल, उसको नाश करने के लिए परम प्रचंड पवन है। ये अनुभव प्रकाश में लिया है दीपचंद जी ने, अनुभव की बात करते हुए कि भव वन को भव जंगल को साफ करने के लिए परम प्रचंड पवन है। ऐसे कोई तूफान आता है जंगल के जंगल साफ हो जाए, ऐसे अनंत जन्म मरण अनंत भव करने वाले संसारी प्राणी को एक दफे स्वानुभव होता है उसका भव भ्रमण खत्म हो गया। अनंत भव के आगे दो चार भव का कोई हिसाब, इसलिए यहाँ पर ये संभवित है तो उसका प्रयास अवश्य अवश्य कर लेना चाहिए। तो स्वानुभव किसको होता है, कि स्थूल रूप से कहें तो तत्व ज्ञान का अभ्यास ही इसका निमित्त कारण है, और कोई निमित्त कारण नहीं है। चोड़ूमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो बात लिया है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास जो मनुष्य करता है उनको सम्यक दर्शन होता है। चिरियंत नारकी को होता है, उसका कारण तो पूर्व संस्कार है, वहां तत्व ज्ञान का अभ्यास की कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं है, लेकिन अपने को वो लागू नहीं पड़ता है। अपने को बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ के स्वानुभव के ग्रंथ हमारे घर में मौजूद है, अन्य मतियों के घर में वो चीज नहीं है, जैनियों के घर में है कि वो क्या चीज है कैसे होता है। इसलिए ज्ञानी ये तत्व का अभ्यास स्वाध्याय जिसको कहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं, और ये परंपरा दिगंबरों में चालू है, चालू रही है। मतलब कैसे कि दिगंबर मंदिरों में शास्त्र स्वाध्याय की व्यवस्था होती है, शास्त्र भी रहते हैं और स्वाध्याय करने की जगह भी रहती है। बहुभाग छोटा मंदिर हो अलग बात है, बाकी करीब करीब सब मंदिर में वो व्यवस्था है। श्वेतांबरों में वो व्यवस्था आजकल नहीं है, और स्थानकवासी में भी कोई शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा नहीं रही। दिगंबर में ये परंपरा है, लेकिन स्वाध्याय करने वाले, स्वाध्याय की रुचि वाले मनुष्य बहुत कम हैं, इसलिए कुछ एक करते हैं, करीब करीब लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो परंपरा से वो व्यवस्था वहाँ रखी है। ये स्थूल रूप से बात है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को सभी को सम्यक दर्शन नहीं होता, किसी को होता भी है और किसी को नहीं भी होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो ये विचार करने योग्य है कि होने वाले को क्यों होता है और नहीं होने वाले को क्यों नहीं होता है, कि जो मनुष्य यथार्थ रूप से अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य से स्वाध्याय करता है उनको तो होता है, और जिसका परलक्ष्य रहता है उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसका संबंध लक्ष्य के साथ है, होने का और नहीं होने का संबंध लक्ष्य के साथ है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की पूर्व शर्त वो है कि उसको स्वरूप की पहचान यानी स्वरूप का निश्चय होना चाहिए, कि जिस निश्चय के काल में स्वरूप का लक्ष्य होता है, स्वरूप का लक्ष्य बन जाता है। स्वरूप की पहचान और स्वरूप निश्चय बिना किसी को भी सम्यक दर्शन होता नहीं, स्वानुभव नहीं होता, स्वानुभव और सम्यक दर्शन नहीं होता। वो बात कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार की 144 गाथा में किया है, कुंदकुंद आचार्य ने किया, अमरचंद्र आचार्य ने टीका में किया है, मूल गाथा में नहीं है, टीका में वो बात है। तो स्वरूप निश्चय आवश्यक है, और स्वरूप निश्चय में तत्व ज्ञान सहायक होता है, तत्व का अभ्यास सहायक होता है, और स्वरूप निश्चय सत्पुरुष के योग बिना नहीं होता, वो बीज ज्ञान है। बीज ज्ञान ज्ञानी पुरुष से ही मिलता है और जगह नहीं मिलता है, और वो भी कब मिलता है कि ज्ञानी पुरुष की जिसको पहचान होती है उसको मिलता है। इसलिए स्वरूप की पहचान के पहले ज्ञानी की पहचान होना आवश्यक है। संग मिल सकता है लेकिन पहचान होना अलग बात है, इसके लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता में दृढ़ मुमुक्षुता होनी चाहिए, अमलीकरण का स्टेज आना चाहिए, और अंतर्मुख वृत्ति होने का उत्साह होना चाहिए, तब पहचान होती है, इसके पहले पहचान नहीं होती। और दृढ़ मुमुक्षुता मैंने पूर्णता का लक्ष्य है, वो अंतकरण की शुद्धि बिना नहीं होता, और अंतकरण की शुद्धि परिभ्रमण की वेदना के अलावा नहीं आती। इसलिए जिसको भव भ्रमण की वेदना है यानी भव भ्रमण का तीव्र निषेध है, उसी को ही भव भ्रमण का नाश होता है, दूसरे को नहीं होता। सत्पुरुष के चरण में तो अनंत बार गया कि नहीं गया? हाँ, अच्छा, सत्पुरुष के चरण में गया और सत्पुरुष की नहीं माने तो सत्पुरुष के चरण में गया है क्या है? गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि ओढ़नी ओढ़े धनी की और धनी का कहना माने नहीं, कोई बाई के विषय में, तो भाई ये कौन, ये औरत कौन है, तो फलाने फलाने की पत्नी है। नाम तो इसका बोला जाए, इसके धनी के नाम से बुलाया जाए कि भाई ये कौन है भाई, भाई फलाने फलाने की पत्नी। क्यों? क्योंकि उसकी ओढ़नी तो वो ले आता है बाजार से, उसकी साड़ी वगैरह जो है वो तो वो खरीद करके लाता है कि तुम पहनो ये कपड़े, तो बोलनी तो इसकी ओढ़े, और उसका कहना माने नहीं, वो बोले कि तुम इधर जाओ, तो कहीं हम उधर जाएंगे, तुम खाना खा लोगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाना है तो क्यों खाएंगे, उल्टी चले। ऐसे गुरु के पास जाए और गुरु की तो माने नहीं, यही हालत हमारी हुई है। है बात तो हास्यास्पद है, लेकिन हम लोगों ने यही हास्यास्पद प्रवृत्ति की है। जैसे कि हम जैनी हैं और जिनेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं, तो बोले कि क्या है कि जैन परमेश्वर तीर्थंकर जिनेन्द्र परमात्मा के अनुयायी है, वो जैनी है, लेकिन जिनेश्वर का तो माने नहीं, धनी तो वो है हमारे, पर इनकी तो हम माने नहीं, इनकी आज्ञा में रह नहीं, तो जैनी कहाँ के हैं? हाँ, जो जिनाज्ञा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि है वो जिनाज्ञा मानता नहीं है। परीक्षा नहीं करता है वो तो परीक्षा नहीं करता है, उस विषय में प्रकरण चला है ना, तो वो तो पहला नहीं वाला है आज्ञा मानने, परीक्षा नहीं करता है तो जिनाज्ञा तो परीक्षा करने की है क्या नहीं? जिनाज्ञा माने और सम्यक दर्शन नहीं हो गए ऐसा कैसा बन सकता है? भगवान की आज्ञा के अधीन हुए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। कोई भी परीक्षा करता है, सामान्य व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो, 8 साल के बाद 8 बच्ची लड़के या लड़का कोई भी हो, उसमें अपना प्रयोजन समझने की बुद्धि आ जाती है, वो अपना सुख दुख का प्रयोजन पकड़ सकते हैं। 8 साल के बाद मनुष्य का जीव अपना सुख दुख का प्रयोजन समझ लेता है, और वो तो सामान्य जीव भी सुख दुख का प्रयोजन तो सब समझता ही है, नहीं समझता है क्या? हाँ, संसार का सुख दुख है उसका प्रयोजन भी समझता है कि नहीं समझता है? ये पारमार्थिक सुख दुख की बात है, समझे ही समझे, नहीं समझे वो बात नहीं।
જૈન નું અભિમાન રાખતો હોય, જૈન માં પોતાની વસ્તી ગણતરી હોય, આ ઋષભદેવજી તો પૃથ્વી ઘડેલી તક કે પેલો કે ના તો બ્રહ્મા ઘડેલી, પાછો કે ઋષભદેવજી આ ઘડી પૃથ્વી, અને પાછા અમે જૈન છીએ, અમારા ઋષભદેવ હાચા, એ કેમ?
वर्तमान जैन संप्रदाय में कहलाने वाले जैन सच्चे जैन नहीं है, इसलिए हम लोग तो शुरू में ऐसे बोलते हैं कि जैसे साधु पैदा नहीं होते, जन्म होने के बाद साधु बनना पड़ता है, ऐसे जैन पैदा नहीं होते, जन्म होने के बाद जैन होना पड़ता है। क्या ऐसे लेते थे हम तो शुरू शुरू में ऐसे लेते थे कि जैन तो बनना पड़ता है, ऐसे जन्मों से थोड़े जैन होते कोई, क्योंकि अभी ऐसा दिखता नहीं है। बाकी तो जन्म से भी जो ज्ञानी होते हैं, पूर्व के आराधन करके ज्ञान करके आते हैं, वो जैन जन्म से भी जैन है, लेकिन उन दिनों में इतना उघाड़ नहीं था तो ऐसे लेते थे, क्योंकि प्राय परिस्थिति वही देखने में आती है।
કહેશે જોઈને કે મારે ભગવાનની મહેરબાની એમનું સુખાલ્યું, એમ કહેશે ભગવાન આલ્યું સુખા બધું કરવા, ભગવાનની મહેરબાની.
ભગવાન ભગવાનને ઉસમે સુખ બોલાય નહીં હે. ऐसा अनुभव होने पर बात तो यहाँ से चली, ऐसा अनुभव होने पर अपना शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप आस्वादन आता है और वो आस्वादन होने से भव भ्रमण रहता नहीं है, भव भ्रमण का नाश हो जाता है. इसलिए जितने काल तक अनुभव है उतने काल तक वचन व्यवहार सहज ही बंद हो जाता है, वचन व्यवहार नहीं रहता. क्यों? कि वचन विकल्प पूर्वक होता है और स्वानुभव निर्विकल्प है, इसलिए विकल्प का नाश हो गए तो विकल्प अनुसार जो वचन प्रवृत्ति है उसका भी नाश हो जाता है. तो निर्विकल्प दशा में कोई वचन व्यवहार रहता नहीं है, निर्विकल्प दशा में वचन का कोई बातचीत का प्रसंग नहीं होता. जब छद्मस्थ को भी निर्विकल्प स्वानुभव के काल में वचन व्यवहार नहीं है तो केवली तो परिपूर्ण निर्विकल्प है, उनको बातचीत का व्यवहार कैसे हो सकता है कि नहीं? हिलते हैं, जीभ हिलती है, कंठ हिलता है, ये सब होता है. जबकि केवल ज्ञानी को कुछ हिलता बिलता नहीं है, वो तो ध्यानस्थ अवस्था में है और एक ओमकार नाद है. तो इनके आत्मा की उपस्थिति के निमित्त से चालू हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप फिर अपने आप चालू होता है. दिन में चार दफे चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है. बातचीत का प्रसंग केवली को नहीं है, ये लोग ने बातचीत बनाई ना, इसलिए पीताम्बर शास्त्र में वो बात आती है कि भगवान गौतम स्वामी ने ऐसा पूछा, महावीर स्वामी ने ऐसा जवाब दिया कि हे गौतम ऐसा है, बात तो ऐसी है, ऐसा होता नहीं. जैसे बोला कि हमको ये दर्द हो गया है, हमारी दवाई यहाँ से मंगा दो, ऐसी कोई बातचीत का प्रसंग निर्विकल्प दशा में हो सकता नहीं है. सूक्ष्म अंतर जल्प चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता तो शुक्ल ध्यान में इतनी स्थूल बातचीत का विकल्प चले वो केवल ज्ञान को समझे नहीं. वो केवल ज्ञान को भी नहीं समझे और सम्यक दर्शन को भी
नहीं समझे.
इतनी स्थूलता आ गई, कैसे शास्त्र बना दिया, कितनी बड़ी गड़बड़ है. देखो खुद ही मालूम नहीं, कहां से बताएंगे? जिसको मालूम ही नहीं वो बताएंगे कहां से बात. इसलिए विधि विषय कोई बात वहां आती नहीं है. जितने काल तक अनुभव है उतने काल तक वचन व्यवहार सहज ही बंद हो जाता है, क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्षपने कथक है. परोक्ष चीज का कथन करने वाला वचन व्यवहार है, प्रत्यक्ष चीज का कथन करने वाला वचन व्यवहार नहीं है, वो तो अनुभव का विषय हो गया. और यह जीव तो प्रत्यक्षपणे अनुभवशील है, जब अनुभव होता है तो वो तो प्रत्यक्षपणे अनुभवशील है, इसलिए अनुभव के काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ नहीं रहा, कोई विकल्प भी नहीं रहा और वचन व्यवहार भी नहीं रहा. कैसी है जीव वस्तु जिसका अनुभव होता है कि सब प्रकार के विकल्पों के क्षयकरणशील है. जीव का स्वभाव कैसा है कि सभी विकल्पों का क्षय कर देना, नाश कर देना, यही वस्तु का स्वभाव है. विकल्प करना, राग करना वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। संसारी जीव राग किए बिना रह नहीं सकता, और आत्मा का वो स्वभाव नहीं है, उल्टी बात है। भावार्थ ऐसा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार से सहज भिन्न है, विरुद्ध है, सूर्य का प्रकाश अंधकार से विरुद्ध है। सूर्य को पूछो अंधेरा कैसा होता है तो बोले कि हमको तो मालूम नहीं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। और घुवड़ को पूछो, घुवड़ बोलते ना आपने, आप क्या उल्लू 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 बोलते हैं, उसको पूछो कि सूर्य कैसा है, क्या दुनिया में है ही नहीं सूर्य, जगत में सूर्य जैसी कोई चीज है नहीं, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, वैसे आत्मानुभव भी समस्त विकल्पों से रहित ही है। विकल्प और आत्मा दोनों को परस्पर विरुद्धता है। आत्मा स्वरूप से निर्विकल्प है, सहज निर्विकल्प स्वरूप है, और विकल्प है तो बिल्कुल इसके विरुद्ध जाति का पर्याय है। अनुभव स्वानुभव भी समस्त विकल्पों से रहित है। यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि स्वानुभव होने पर कोई विकल्प रहता है, या जिसका नाम विकल्प है वो सब मिट जाता है, तो उसका उत्तर ऐसा है कि सभी विकल्प मिट जाता है, कोई विकल्प नहीं रहता है। ये प्रश्न राजमल जी ने इसलिए उठाया है कि स्वानुभव होने के पहले आत्मा के विकल्प होते हैं। जिस आत्मा का अनुभव करना है, होना है, वो लक्ष्य में आ गया निर्णय के काल में, पहचान के काल में, कि आत्मा ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, साक्षात सिद्ध पद स्वरूप, वो लक्ष्य में है और विकल्प चलता है, उस विकल्प को निश्चय नहीं का विकल्प कहते हैं, और अनुभव करना है ऐसा विकल्प को व्यवहार नहीं का विकल्प कहते हैं। प्रश्न उठाए कि ऐसा विकल्प तो चलता होगा, क्योंकि वो पहले चलता है, अनुभव होने पर नहीं चलता, अनुभव के पहले चलता है, अनुभव के काल में नहीं चलता। नयश्री अपि न उदयति प्रमाणम अस्तिमेति न विद्म निक्षेप चक्रम क्वचित याति। जो अनुभव आने पर प्रमाण नए निक्षेप भी झूठा है। कल जो बात थोड़ी चली थी वो विषय थोड़ा इधर आता है कि अनुभव होने पहले ऐसे विकल्प चलते हैं, तो जहाँ एकत्व होता है तो विकल्प रूप जो विकल्प होता है उस रूप अपना अनुभव हो जाता है, आत्मा का अनुभव है नहीं, तो जो विकल्प चला इसका अनुभव होता है। लेकिन ऐसा आत्मा नहीं है, जैसा विकल्प है ऐसा आत्मा नहीं है, आत्मा निर्विकल्प है, इसलिए अनुभव होने पर मालूम पड़ जाता है कि ये विकल्प है, सो झूठा है, ऐसा मैं हूं नहीं। वहां रागादि विकल्पों की क्या कथा, दूसरे राग की तो हम क्या क्या बात करें। शास्त्र के प्रमाण नए निक्षेप कोई विकल्प झूठा मालूम पड़ता है तो दूसरा विकल्प की तो हम चर्चा ही क्या करेंगे। भावार्थ ऐसे हैं, ऐसा है कि रागादि तो झूठा है ही, जीव स्वरूप से बाह्य है, जीव के स्वरूप में तो रागादि है ही नहीं, आत्मा तो वितराग स्वरूप ही है। प्रमाण नए निक्षेप रूप बुद्धि द्वारा एक ही जीव द्रव का द्रव गुण पर्याय अथवा उत्पाद वही ध्रुव रूप भेद करने में आते हैं, ये सब झूठे हैं। भेद करने में आते हैं वो सब झूठे हैं। जैसे एक स्थान का 20 मीटर ऐसा भेद किया, 20 टुकड़ा नहीं है, 20 भेद वहां नहीं, हो तो अखंड स्थान है, पूरा सलंग है, ऐसे ये सब झूठा है। और ये सब झूठा होने पर जो कोई आस्वाद है वह अनुभव है। ये राजमल जी की बहुत मौलिक शैली है। विकल्प करता है आत्मा का प्रमाण में निक्षेप द्वारा, प्रमाण से मैं ऐसा हूँ, नहीं से मैं ऐसा हूँ, निश्चय नहीं से मैं ऐसा हूँ, व्यवहार नहीं से मैं ऐसा हूँ। लेकिन ये झूठा होने पर कोई स्वाद आता है वो अनुभव है, मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये विकल्प चलता है ऐसा मैं नहीं, लक्ष्य में जो है वो मैं हूँ, विकल्प चलता है ऐसा मैं नहीं हूँ। विकल्प में विकृति हो जाती है, भेद पड़ने में विकृति हो जाती है, उसकी असलियत रहती विकल्प हो। विकल्प शांत होने पर जो अनुभव होता है वही स्वान अनुभव है, विकल्प झूठा मालूम पड़ने पर जो अनुभव होता है वही अनुभव है। ये कहने वाला अनुभवी है इसका प्रमाण है, ये जो वचन है इससे मालूम पड़ता है कि कहने वाला अनुभवी है। राजमल जी का अनुभव दिखता है। तो ये सब विकल्प झूठा होने पर जो कुछ वस्तु का आस्वाद आता है डायरेक्ट, वो अनुभव है। बात ले दिया, नास्ति में विकल्प का झूठापन और अस्ति में स्वरूप का सीधा आस्वादन, ऐसा लिया है।
विकृति
हो जाती है, वस्तु विकृत हो जाती है, कथन करने में वस्तु विकृत हो जाती है, वचनातीत वस्तु है, वचन में आप ले आओ विकृत हो जाएगी बात। विकृत है वचन मात्र, वो तो अपने पंचाध्यायी ग्रंथ में ग्रंथकार ने ऐसा लिया है कि कोई भी वचन बोलो न इति ऐसा नहीं है, मात्र उतना नहीं है, क्यों? अनंत धर्म बाकी रह गया, शुद्ध कहा तो अनंत धर्म बाकी रह गया, बुद्ध कहा तो अनंत धर्म बाकी रह गया, न इति न इति न इति। तो वेदांत वाले ने पकड़ लिया कि जिसको वेद नेति नेति करके पुकारते हैं वैसा परम ब्रह्म है, और वचन मात्र व्यवहार में ले गए वो, मैं अनित्य हूं यह तो व्यवहार है, लेकिन मैं नित्य हूं वो भी व्यवहार है। 561-62-63 में लिया, नित्य को भी व्यवहार में ले गए, क्योंकि वचन मात्र व्यवहार है तो वचन का विषय भी व्यवहार हो गया, भेद पड़ गया, आत्मा ऐसा भेद वाला नहीं। एक लड्डू है या एक औषध की गोली है जिसमें हजारों चीज डाली हो, एक औषध की गोली में हजारों औषधियां हो, उसको घूट करके फिर गोली बना दी, हजार औषध डाल दिया, फिर इसकी गोलियां बनाते हैं, एक गोली में कितनी औषधियां हैं? हजार। अब किस औषध से इसका नाम देंगे? कोई एक औषध से इसका नाम देंगे तो 999 औषधि बाकी रह गई कि नहीं रह गई? हाँ रह गई बाकी। इसलिए नाम देना झूठा है। क्या नाम देना झूठा है? ऐसे आत्मा में अनंत गुण धर्म है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहना झूठा है। बुद्ध मैंने ज्ञान, क्योंकि उतना ही नहीं है ऐसा कहते हैं, क्योंकि स्वानुभव में अनंत गुण का अनुभव है, स्वानुभव में अनंत गुण का अनुभव है, एक गुण का अनुभव नहीं है, इसलिए वो वचन से कह सकते हैं वचनातीत है। आत्मा का स्वरूप भी वचनातीत है और उसका अनुभव भी वचनातीत है। वो तो क्या है कि एक गुण को अनंत गुण का रूप है ना, इसलिए पहचानने में आ जाता है और सावधानी हो सकती है जिसको लक्ष्य में है उसको। प्रमाण किसको कहते हैं कि युगपद अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, एक साथ अनेक गुण अनेक धर्म का ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। यह भी एक विकल्प है। नहीं किसको कहते हैं कि वस्तु के कुछ एक गुण का ग्राहक ज्ञान, यह भी एक विकल्प है। निक्षेप किसको कहते हैं, उपचार घटना रूप ज्ञान, उपचार करना, किसी भी घटना पर उपचार करना उसको निक्षेप कहते हैं, यह भी एक विकल्प है। भावार्थ ऐसा है कि अनादि काल से जीव अज्ञानी है। देखो अब क्या कहते हैं, अनादि काल से जीव अज्ञानी है। अज्ञानी मैंने अपने स्वरूप को कभी अनुभव में लिया नहीं, जीव के अपने स्वरूप को नहीं जानता, अनजाना है अपने स्वरूप से, मूल स्वरूप से अनजाना है। वह जीव जब जीव सत्व की प्रतीति आने को इच्छता है कि मेरे को मेरा सम्यक दर्शन हो, प्रतीति मैंने दर्शन श्रद्धान हो, तब जिस प्रकार से प्रतीति आवे वैसी ही रीति से वस्तु स्वरूप साधने में आता है, तब प्रतीति आती है। जिस प्रकार प्रतीति आवे उस प्रकार वस्तु को स्वरूप को साधने में आता है। और यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास आया, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप को गुण गुणी भेद रूप विचारने पर प्रमाण नहीं निक्षेप रूप विकल्प उपजता है, उत्पन्न हो जाते हैं विकल्प। तत्व ज्ञान के अभ्यास में ये सब विचार विकल्प चलते हैं। यह विकल्प उसी अवस्था में भले ही हो ठीक है, तो भी स्वरूप मात्र अनुभवने पर झूठे हैं, इसका कोई काम नहीं है। जैसे हम एक बहुत मूल्यवान अलंकार खरीदने को जाते हैं, हीरा का, ये 10 लाख का 50 लाख का नेकलेस है, बड़े बड़े अच्छे हीरे इसमें लगे हुए हैं, खरीदने के समय पर उसकी हम परीक्षा करते हैं, हीरे तो बराबर है, सच्चे हैं या अच्छे हैं, और सोना भी बराबर है या नहीं है। दूसरा जोहरी से उसका परीक्षा भी करा लेते हैं, और खुद जोहरी होते हैं तो बराबर परीक्षा कर देते हैं, बराबर मालूम हो गया कि कीमत भी बराबर है और चीज भी बराबर है, पैसे दे दिया, खरीद कर ले गए, वो घर में प्रसंग है इसलिए लिया, शादी का प्रसंग है तो दूल्हा है उसको पहनाओ, तो वो जब पहनता है खुद तब उसको इसका आनंद आता है। उस वक्त वो हीरे कितने हैं, सोने का वजन कितना है, ये सब जो माथाकुट किया था खरीदने के वक्त, जो माथाकुट किया था वो माथाकुट चालू रहे तो पहनने का आनंद आएगा, आनंद चला जाएगा। जिस आनंद के लिए परीक्षा की थी वो परीक्षा के विकल्प वहां नहीं चाहिए। अगर कोई करेगा तो पूरे बेकार, ये विकल्प क्यों करते हो, अभी तुमने खरीद कर लिया, अब ये विकल्प करना बेकार है, तुम आनंद लोने उसका कि हमने ये पहना है, ऐसा अनुभव के पहले प्रमाण नहीं, निक्षेप का विकल्प विचार आता है, अनुभव होने पर इसका आनंद आता है, विचार विकल्प चला जाता है, कोई रहता नहीं। इस तरह से पूरा स्तर बदल जाता है, स्टेज बदल जाता है, पहले स्टेज में आता है, दूसरे स्टेज में वो चला जाता है, इसका कोई काम नहीं है। फिर विकल्प कराए क्यों? निर्विकल्प होने के लिए। प्रमाण में निष्काप विकल्प क्यों कराए? शास्त्र का स्वाध्याय क्यों कराए? कि विकल्प निर्विकल्प होने के लिए है, विकल्प चालू रखने के लिए विकल्प नहीं है। इस तरह से इस श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्वानुभव का बहुत अच्छा वर्णन किया है। वहां तो वो लिखा गया है कि नए का विकल्प तो उदय ही नहीं होता, और प्रमाण है वो तो अस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है, और निक्षेप का चक्कर कहाँ चला जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता। अपरम किम अभिदग्म, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ चला गया। निर्विकल्प अनुभव होने से ऐसी हालत होती है। इस तरह से अनुभव का वर्णन किया है।
सुखदा